जय गिरिवर धारी। जय हो जय हो। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचारी अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधिका रमन ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री श्री गौरताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 11। अध्याय का नाम है पूर्ण समाज चातुर्वर्ण। श्लोक संख्या 26-27 का तात्पर्य नहीं है, तो इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसके बाद 28वां श्लोक है, श्वेत पट में लिखा हुआ है, उसे साथ साथ पढ़ेंगे।
सम्मार्दनोपलेपाभ्याम गृहमंडन वर्तन स्वयं च मंडिता नित्यम परिमृष्ट परिच्छद काम रुच्चावच साध्वी प्रस्त्रेण दमेन च वाक्य सत्य प्रिय प्रेमणा काले काले भजेत पते।
पतिव्रता साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाए तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हो, सदैव स्वच्छ तथा आकर्षक वस्त्र पहने, अपना घर बुहारे तथा उसे पानी तथा अन्य तरल पदार्थों से स्वच्छ बनाए, जिससे सारा घर सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रहे। उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्र करनी चाहिए और घर को अगुरु तथा पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए। उसे अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेम पूर्ण सेवा में लगे रहना चाहिए। अभी श्लोक संख्या 28 सब लोग मेरे पीछे बोले।
संतुष्टा लोलुपा दक्ष धर्मज्ञा प्रिय सत्यवान आप्रमत्ता सुचि स्निग्धा पतिम तो पतितिम भजे
पतितम च
संतुष्टा लोलुपा दक्ष धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् आप्रमत्ता सुचि स्निग्धा पतिम तो पतितम भजे संतुष्टा लोलुपा दक्ष धर्मज्ञा प्रिय सत्यवान आप्रमत्ता सुचि स्निग्धा पतिम तो पतितम भजे।
देवियां
संतुष्टा
शब्दार्थ बोलिए। संतुष्टा सदैव तुष्ट, अलोलुपा लालची हुए बिना, दक्षा सेवा करने में पटु, धर्मज्ञा धार्मिक नियमों से पूर्णतया परिचित, प्रिय सुहावना सत्य सत्यनिष्ठ वाक बोलने में, अप्रमत्ता अपने पति की सेवा में, दत्तचित्त शुचि सदैव स्वच्छ तथा शुद्ध, स्निग्धा स्नेहिल पतिम पति को, तो लेकिन अपतितम जो पतित नहीं है भजेत पूजा करे। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे गृहस्थी के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियमों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। उसे मधुर तथा सत्य भाषणी होना चाहिए। उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित ना हो। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में 8 गुणों का वर्णन किया गया है। स्त्री के लिए 8 गुणों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं इसमें पहला कौन सा गुण है, संतुष्टा। संतुष्टा शब्दार्थ में लिखा सदैव तुष्ट और अनुवाद में लिखा है उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए, पहला है। दूसरा क्या है, लोलुपा अलोलुपा। हाँ, आ इसमें आ तोड़ने पर आता है, अलोलुपा यानी लोभ है हुए बिना, लोभ को त्यागना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, दक्ष दक्षा स्त्री, जब स्त्रीवाचक बनाते हैं तो दक्षा हो जाता है। संतुष्ट का संतुष्टा स्त्रीवाचक, लोलुप का अलोलुप का अलोलुपा स्त्रीवाचक है, दक्ष का स्त्रीवाचक दक्षा। दक्षा का अर्थ क्या है, हाँ सेवा करने में पटु निपुण है ना। यहाँ शब्दार्थ में प्रभुपाल लिखे हैं सेवा करने में पटु और अनुवाद में लिखे हैं उसे गृहस्थी के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए है ना। इसके बाद कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा क्या है, धर्मज्ञ। तो शब्दार्थ में लिखा है धर्मज्ञ धार्मिक नियमों से पूर्णतया परिचित और अनुवाद में लिखा है धार्मिक नियमों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। एक ही चीज है धर्मज्ञ। इसके बाद कितना, ये कितने हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4 हाँ 4 हो गए। पांचवा क्या है, प्रिय सत्यवाक। एक इकट्ठा है प्रिय सत्यवाक। प्रिय सत्यवाक का मतलब वाणी प्रिय भी होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए। केवल ये नहीं कि प्रिय है लेकिन सत्य नहीं है, है ना, या सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है, अप्रिय सत्य नहीं, सत्य भी हो और प्रिय भी हो, है ना, प्रिय सत्यवाक। तो इसमें शब्दार्थ में लिखा है सत्यनिष्ठ सुहावना, सुहावना सत्यनिष्ठ बोलने में, ऐसी बात सुहावनी बात हो और सत्यनिष्ठ हो, है ना। और अनुवाद में लिखा है मधुर और सत्य भाषणी होना चाहिए, मधुर बोलने में, मधुर
हो और सत्य भी हो। कितने हो गए? पांच हो गए। छठवां क्या है? अप्रमत्ता। अप्रमत्ता इसमें शब्दार्थ में लिखा है अपने पति की सेवा में दत्त चित्त है, और इसमें अनुवाद में लिखा है उसे अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, है सेवा में सतर्क अप्रमत्ता, यानी प्रमाद नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं, अप्रमत्ता है ना। कितने हो गए? छह हो गए। सातवां क्या है? शुचि, है ना। तो इसमें लिखा है शब्दार्थ में सदैव स्वच्छ तथा शुद्ध, स्वच्छता भी होना चाहिए और शुद्धता भी होना चाहिए दोनों, है ना। अनुवाद में लिखा है सदैव शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसके बाद आठवां स्निग्धा। स्निग्धा का शब्दार्थ है स्नेहिल, स्नेहिल है। और इसमें क्या लिखा है? प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हाँ, वो उसके साथ में आ गया, सेवा के साथ में आ गया कि प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए, है ना। फिर है कि ये आठ प्रकार के गुणों का अभ्यास करे स्त्री, है पति की सेवा में आठ प्रकार के गुणों का अभ्यास करे, लेकिन फिर पतिम तू अपतितम, तू का मतलब किंतु, पति की सेवा करे जो पतित नहीं है। पति तो होना चाहिए, पतित नहीं होना चाहिए। पति पति की सेवा करे, पतित की सेवा नहीं करे। पति हो लेकिन पतित ना हो, है ना। यहाँ पर तू लगा दिया है तो यहाँ पर मतलब एक तरह से ब्रेक लग गया। भाई सोचो अभी कि किसकी सेवा करनी है, पति की सेवा कर रहे हैं या पतित की सेवा कर रहे हैं। स्त्री को सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पतित की सेवा नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद पूरा तात्पर्य जो इसी बात पर लिख रहे हैं, ये आठ गुणों की चर्चा ना करके प्रभुपाद इसकी चर्चा कर रहे हैं कि पति जो है होना चाहिए अपतित होना चाहिए। पति होना चाहिए लेकिन पतित नहीं होना चाहिए, अपतित होना चाहिए। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शीला प्रभुपाद देखी, धर्म के अधिकारी याज्ञ वल्क के आदेशानुसार अशुद्धे संप्रतिक्षो ही महापातक दूषिता, जो दस विध संस्कार के अनुसार शुद्ध नहीं किया गया होता उसे महान पाप कर्मों के फलों से दूषित माना जाता है। दस प्रकार के संस्कार मनुष्य के जीवन में आवश्यक हैं, है ना। अब अगर कलयुग में देखा जाए तो कोई संस्कार है ही नहीं, है ना। अब तो केवल एक ही संस्कार है, हरिनाम, केवल हरिनाम, कृष्ण की शरण लेना, भक्ति के जो नियम है यही सबसे शक्तिशाली संस्कार है, जो कि बाकी जितने संस्कार हैं, है ना, वो ना भी हो तो ये संस्कार जो है बहुत शक्तिशाली है, है ना। तो याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार प्रभुपाद ने इस बात का उद्धरण दिया, लेकिन फिर प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भगवद गीता में भगवान कहते हैं। भगवद गीता क्या है? सर्वशास्त्रमयी गीता, सब शास्त्र, है ना। तो गीता में भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रबद्यन्ते नराधमा, जो दुष्ट लोग मेरे शरण में नहीं आते वे अधर्म है। अगर दस विध संस्कार भी हो, दस प्रकार के संस्कार होने के बावजूद भी जो कृष्ण के शरण ना ले वो क्या है? अधम। तो यहां पर प्रभुपाद इशारा कर रहे हैं स्त्री के लिए कि स्त्री को देखना चाहिए कि पति अगर विरोध कर रहा है, कृष्ण के शरण नहीं लेता है और अपने पत्नी को भी कृष्ण के शरण लेने में विरोध करता है तो उसकी सेवा नहीं करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, जो दुष्ट लोग मेरे शरण में नहीं आते वे अधम है। नराधम का अर्थ है अभक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है यही भजे से ही बड़ा। तो ये पूरा जो प्यार है वो क्या है? यही कृष्ण भजे से ही बड़ चतुर, यही कृष्ण भजे से ही बड़ चतुर। तो प्रभुपाद ने कुछ शब्द दिए हैं, है ना। इसका मतलब है वो पवित्र है, वही उन्नत है। पतित का उल्टा, पतित का उल्टा क्या है? उन्नत, उठा हुआ। पतित का मतलब गिरा हुआ, तो इसका उल्टा उन्नत, उठा हुआ, है ना। तो यही कृष्ण भजे सही बड़ चतुर, तो वही जो है चतुर है, उन्नत है। फिर अभक्त हीन छार, जो भक्त नहीं है, आगे प्रबल जो भी भक्त होता है वो पाप रहित है, किंतु जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पतित तथा नीच है। हीन छार, हीन छार यानी पतित है और नीच है जो भक्त नहीं है ना। तो ये जो है मतलब एक विधि हो गई समझने की कि कौन सा पति पतित है और कौन सा पति उठा हुआ है ना। आगे अतः ये संस्तुति की गई है कि पतिव्रता पत्नी पतित पति की संगति ना करे, पतित पति की संगति ना करे। पतित पति वह है जो चार प्रकार के पाप कर्म करता है, यथा अवैध यौन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन। ये चार प्रकार है ना। तो चार प्रकार के जो पाप कर्म हैं ये बाधक हैं, भक्ति में बाधक हैं, है ना। तो भक्ति तो करता ही नहीं है और चार प्रकार के पाप कर्म करता है तो और नीचे गिर रहा है, और नीचे जा रहा है ना। आगे प्रूव करते हैं, विशेष रूप से जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरणागत नहीं होता वो कलुषित समझा जाता है ना। शरण आगे, इस तरह साधु स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। तो इसको समझना है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यदि पति नराधम है तो भी वो दासी की तरह सेवा करे ऐसा नहीं है। नारद जी कह रहे हैं और प्रभुपाद नारद जी की बात को दोहरा रहे हैं, दासी की तरह सेवा नहीं करें। आगे, यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न होते हैं किंतु साधु स्त्री पतित पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई। साधु स्त्री पतित पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई। यदि उसका पति पतित हो तो संतुति की जाती है कि वो अपने पति की संगति त्याग दे, किंतु पति की संगति त्यागने का अर्थ यह भी नहीं है कि वो फिर से विवाह कर ले और इस तरह वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। इसको समझो कि प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो बातें अभी कहीं पहले, तो ऐसे लगता था कि भाई त्याग दो, छोड़ दो, सेवा ना करो, छोड़ दो, तो छोड़ नहीं, शारीरिक रूप से छोड़ नहीं सकती पति, मतलब स्त्री जो है अपने पति को नहीं छोड़ सकती है ना। लेकिन क्या करें, यदि दुर्भाग्यवश कोई साधु स्त्री किसी पतित पति से ब्याही जाती है तो उसे पति से बिलग रहना चाहिए, उसे पति से बिलग रहना चाहिए, है ना। कैसे, शरीर से तो अलग नहीं हो सकती लेकिन अपने हृदय से दूरी बनाए, आप समझे, हृदय से दूरी बनाना है ना। दुश्मनी भी ना हो, दोस्ती भी ना हो, कुछ थोड़ा अब ये भी नहीं कि मतलब फिर तू मैं हो, हमेशा झगड़ा हो घर में, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये बुद्धि भगवान से मांगनी पड़ेगी, स्त्री को ऐसी बुद्धि मांगनी पड़ेगी है कि दूरी बना के रखना है ना, उसके पाप कर्मों में हिस्सा नहीं, उसके पाप कर्मों में भाग नहीं लेना है, उसके पाप कर्मों में सहयोग नहीं देना है ना। लेकिन व्यवस्था के कारण उसे रहना पड़ रहा है, पति के साथ रहना पड़ रहा है ना। तो ये जो है मतलब एक स्थिति है ऐसी। आगे प्रभु बोलते हैं, इसी प्रकार पति भी अपने पत्नी से विलग रह सकता है, अगर पत्नी ऐसी है तो विलग रह सकता है। यदि पत्नी शास्त्रों के वर्णन के अनुसार साध्वी ना हो, निष्कर्ष ये निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को यहाँ वर्णित समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए। अगर पति जो है शुद्ध वैष्णव है तो पत्नी को इन गुणों का अभ्यास करके अपना जो है लाभ, पूरा लाभ है। आगे, तभी दोनों सुख से रहेंगे और कृष्ण भावना मृत में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, है ना। तो ये जो है मतलब समझना है, यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है, तो इसको समझना है। जैसे कि वाल्मीकि मुनि के बारे में ये बताया जाता है कि वे रत्नाकर नाम के डाकू थे, यात्रियों को लूटते थे धन छीनते थे और अपने कुटुंब का भरण पोषण करते थे। तो एक बार नारद जी को भी उन्होंने जो है इसी प्रकार से पकड़ा। तो नारद जी ने पूछा कि तुम ये सब कर्म जो कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? बोले मेरा कुटुंब है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण करता हूँ। नारद जी ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता क्या इस पाप कर्म में से हिस्सा बटाएंगे तुम्हारे? क्यों नहीं बटाएंगे? जब मैं उनके लिए कर रहा हूँ तो क्यों नहीं बटाएंगे? तो उन्होंने कहा कि पूछ के आओ, है ना। तो पत्नी से भी पूछा, तो पत्नी ने भी कहा कि मैं पाप कर्म में हिस्सा नहीं बटाऊंगी। तो यहाँ पर वही बात है, पतिम तो पतिम मुझे, है ना। तो पत्नी ने साफ कह दिया मैं तुम्हारे पाप कर्मों में हिस्सा नहीं बटाऊंगी। तो बात वही है ना, है ना, कि पत्नी को जो है अपने पति के पाप कर्मों में सहयोग नहीं देना चाहिए। इसको समझना है कि नहीं है कि भावुकता में नहीं नहीं जो भी नरक जाए तो मैं भी नरक जाऊंगी, मेरा पति नरक जाए तो मैं भी नरक में जाऊंगी, ये नहीं है, है ना। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी रक्षा करना है, है? और अपना उद्धार करना, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम साधेत, तो अपने द्वारा अपना उद्धार करने है, अपने को जो है अधोगति में नहीं डालना है, ना। आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, तो आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र हैं। इसलिए आपको शास्त्र साधु आचार्यों के अनुसार आपको दिशा निर्देश लेना है कि आपको किस समय क्या करना है जिससे आप पतित ना हो, आपकी अधोगति ना हो और अपना उद्धार हो, अपने उद्धार के लिए तो ये जो है अपनी जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब देखिए एक उदाहरण है, तारा, तारा सती स्त्रियों में एक मानी जाती है, मानी जाती ना, सती स्त्रियों में एक मानी जाती है, है ना। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अपने पति के जो है इस प्रत्येक कार्य में उसने सहयोग नहीं दिया। जैसे बाली जब राम के आदेश से सुग्रीव जो है बाली को ललकारते हैं और बाली जो है ललकार को सहन नहीं करता और वो जाता है, तो बाली को जो है बहुत घमंड है, उसके पास शक्ति बहुत ज़्यादा है, सुग्रीव निर्बल है तो जाता है, सुग्रीव की ललकार को सहन नहीं करता। और तारा कहती है कि तुम समझो इस समय सुग्रीव के अंदर हिम्मत नहीं है तुमको ललकारने की, उसने श्री राम का जो है बल प्राप्त किया है, श्री राम के बल पर वो तुम्हें ललकार रहा है, और तुम अगर सुग्रीव से युद्ध करोगे तो सीधे श्री राम का तुम विरोध करोगे, तो तुम मत जाओ, अब तुम जो है सुग्रीव से विरोध ना करो। सुग्रीव से विरोध करने का अर्थ है श्री राम से विरोध करना डायरेक्ट, लेकिन वो नहीं माना, है ना, नहीं नहीं है, राम से मेरा कोई विरोध नहीं है, है ना। उसने कहा नहीं नहीं मैं राम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, राम क्यों मेरा विरोध करेंगे, मेरी सुग्रीव से लड़ाई है। तो समझना चाहिए, तारा समझा रही है, है कि अगर राम ने जो है सुग्रीव को अपना आश्रय दिया है, अपनी शरण दी है, तो अब सुग्रीव का विरोध करने का मतलब राम से विरोध करना। लेकिन उसने नहीं मैं तो जाऊँगा, तो तारा तो जितना बता सकती थी बताया उसने, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती थी, है ना। लेकिन बाली फिर जो है जब मारा गया तो तारा सती नहीं हुई, बाली की मृत्यु पर तारा सती नहीं हुई, उसने सुग्रीव से विवाह कर लिया, है ना। लेकिन फिर भी सती मानी गई, क्यों सती मानी गई? क्योंकि भगवान के प्रति, चूँकि हाँ उसके समर्पण की भावना है, इसलिए वो सती मानेगी। आप समझ रहे हैं? तो सती का मतलब क्या है? स्त्री। वैसे ये कहा जाता है भाई पति, ये अगर पति शरीर छोड़ दे तो पत्नी जो है मतलब उसके साथ हा? जल जाए तो वो सती कहते हैं, सती हो गई। तो तारा कौन सी सती? तारा कहाँ सती हुई, लेकिन फिर भी सती मानी गई कि उसने पति को सही शिक्षा दी, सही सलाह दी। शिक्षा देने का तो अधिकार नहीं है स्त्री को, लेकिन सलाह उसने दी तो वो सती है, है ना। उसी प्रकार से मंदोदरी को भी सती माना गया है, है? मंदोदरी ने रावण को समझाया कि श्री राम का विरोध ना करो, सीता को वापस कर दो, है ना। तो राम ने नहीं मानी मंदोदरी की बात, और रावण जब मारा गया तो मंदोदरी की असती हुई रावण के साथ? नहीं हुई, उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन फिर भी सती मानी गई। क्यों सती मानी गई? कि श्री राम के प्रति उसका समर्पण की भावना है, इसी सती है ना। हाँ तो इसको समझना है। यज्ञ पत्नियां जो ब्राह्मण की जो पत्नियां थीं, हाँ तो जब कृष्ण बलदेव ने भोजन के लिए अपने सखाओं को भेजा था उन ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों को उन्होंने मतलब संकेत कर दिया था कि आपका जो यज्ञ है वो वैदिक मंत्रों के अनुसार सही हो रहा है और इसमें सही विधि से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण बलदेव मांग रहे हैं, हाँ तो इशारा कर दिया था कि कृष्ण बलदेव अगर मांग रहे हैं भोजन तो यज्ञ के बीच में भी उनको भोजन दिया जा सकता है, क्योंकि वो तो सब यज्ञ के भोक्ता, असली भोक्ता तो वही है। तो इशारा कर दिया था, बालकों को समझाया था कि कृष्ण बलदेव मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांगना। हालांकि भूखे थे कृष्ण के सखा, उन्होंने कहा था कि तुम अपने लिए नहीं मांगना कि हम लोग भूखे इसलिए भोजन दीजिए। यज्ञ में वो विधि नहीं है कि किसी भूखे को भोजन दिया जाए यज्ञ के बीच में, जब तक यज्ञ में वो अर्पित ना हो। लेकिन कृष्ण बलदेव भूखे हैं, वे मांग रहे हैं, तो ब्राह्मणों को इशारा कर दिया था कि कृष्ण बलदेव अगर मांगे हैं तो यज्ञ के बीच में भी भोजन दिया जा सकता है, फिर यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है। यज्ञ तो सबसे अधिक पूर्ण हो गया, सबसे अधिक सफल हो गया, हाँ लेकिन उन्होंने नहीं दिया, हाँ और वो निराश होकर आ गए। तो जब कृष्ण के पास आए तो कृष्ण ने कहा कि अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे भी कहा कि कृष्ण बलदेव भूखे हैं, तो वो देंगे। तो वही यज्ञ का जो भोजन था वो उनकी पत्नियों ने अपने पतियों से पूछे बिना थाल भर भर करके ले गई। अब वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वो विधि के अनुसार यज्ञ कर रहे हैं, तो भोजन तो किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन्होंने थाल भरे और जो है ले गई, कृष्ण बलदेव के पास आ गई, लेकर के आ गई, है ना। और फिर उन्होंने मतलब कृष्ण बलदेव से अब ये कहा कि अब हमें जो है आप मतलब अपने शरण में रखिए, अब हम अपने पत्नियों के पास नहीं जा सकते क्योंकि वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो बड़े कठोर ब्राह्मण हैं, हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि जिससे मैं स्वीकार करता हूँ तो किसकी हिम्मत है कि उसे अस्वीकार करे, तुम जाओ वे तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, है। और वो जब पत्नियां गईं तो उन ब्राह्मणों ने अपने से श्रेष्ठ मान करके उनका सम्मान किया कि हमसे श्रेष्ठ हैं, हमारा ये जो है बेकार है हमारा ये कहना, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाए, उन्होंने हमें अवसर दिया था सेवा करने का, है, और हम इन्हीं यज्ञों में लगे रहे, है ना, फिर फायदा क्या हुआ इन यज्ञों का कि परमेश्वर की सेवा नहीं हुई। और इन्होंने इन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई ब्रह्मचर्य नहीं किया, कोई मंत्र अभ्यास नहीं किया, तपस्या नहीं की, और इन्होंने जो है कृष्ण बलदेव की सेवा कर ली। हमारा जो है सब मंत्र है, यज्ञ है, तपस्या है, सब बेकार है। तो ऐसा है कि उन्होंने जो है त्यागा। एक तुलसीदास ने भजन मतलब पद लिखा है, तुलसीदास का एक पद है, तो उसमें मतलब एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम सीताराम प्रिय नहीं है, तजिय ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तो चाहे जितना भी स्नेही हो अपना व्यक्तिगत रूप से, चाहे जितना भी स्नेह हो उसका, लेकिन उसको करोड़ शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। तो उसमें उदाहरण दिया है, पिता तजे प्रहलाद, पिता तजे प्रहलाद, प्रहलाद ने जो है पिता का त्याग कर दिया, जबकि पिता बहुत स्नेही था, अपने पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद सबसे ज़्यादा स्नेह करता था। तो प्रहलाद ने सोचा होता कि पिता जब इतना प्रेम करते हैं तो उनसे कोई अप्रिय बात ना बोली जाए। तो पिता प्रहलाद सोचते तो ठीक है, पिता के दिल को क्यों तोड़ें। अगर पिता को जो है नफरत है विष्णु से, तो मैं विष्णु की भक्ति छोड़ देता हूँ, क्योंकि पिता मेरा मुझसे इतने प्रेम करते हैं तो उनका दिल क्यों तोड़ा जाए। तो प्रहलाद जो है विष्णु की भक्ति छोड़ देते तो पिता का उनको स्नेह, बहुत स्नेह मिलता है। लेकिन क्या किया, त्याग दिया, पिता का त्याग कर दिया। पिता था जो प्रहलाद विभीषण बंधु, और रावण विभीषण से बहुत स्नेह करता था, विभीषण जो कुछ भी करें कोई विरोध नहीं। लेकिन विभीषण ने विरोध किया रावण का, है ना। तो विभीषण भी सोचते कि रावण जब मेरे से इतना स्नेह करता है, मेरे किसी कार्य में विरोध नहीं करता है, तो मैं जो है क्यों विरोध करूं। लेकिन विभीषण ने रावण का विरोध किया, और विभीषण ने ही रावण का त्याग किया, विभीषण ने ही रावण का त्याग किया, है ना। तो विभीषण बंधु भरत महातारी, भरत जी ने माता का त्याग किया। माता कितना स्नेह करती थी, कि भरत के स्नेह के कारण ही उसके पति की मृत्यु हुई, तो उसने कुछ भी शोक नहीं किया। इतना इसने अपने पुत्र के प्रति, कि पति की मृत्यु हो गई तो भी उसे कोई शोक नहीं हुआ, बड़ी प्रसन्न हो रही है कि मेरा पुत्र राजा बन जाए। और राम को भी जो है 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो भी से कुछ भी शोक नहीं, वो बहुत खुश हो रही, खुशी मना रही है कि मेरा पुत्र राजा बन जाए। और उसी पुत्र ने माता को जो है त्याग दिया, कि तुम मेरी माता नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा जीवन कलंकित हो गया। तो भरत जी ने त्याग दिया माता का, जबकि कितना स्नेह है माता का। तो भरत जी सोचते कि देखो माता ने इतना त्याग किया मेरे लिए, माता का इतना स्नेह है मेरे प्रति कि अपने पति की मृत्यु का भी उसको जो है जरा भी शोक नहीं है, 1% भी शोक नहीं है। और राम भी जो है राम भी वनवास दे दिया तो भी कुछ दुख नहीं हो रहा है, तो मैं माता के दिल को क्यों तोड़ूं। लेकिन क्या किया भरत जी ने, त्याग दिया कि मुझे जो है कभी कैकेयी का पुत्र नहीं कहना, मेरे लिए बहुत ये कष्ट की बात है कि कोई मुझे कैकेयी का पुत्र कहेगा, है ना। भरत महातारी गुरु बलि तजो, और बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। तो गुरु शुक्राचार्य तो बहुत स्नेह करते थे बलि से, और बलि के हित के ही लिए कह रहे थे कि वामन देव को ना दो, अगर तुमने देने का वचन दे दिया है कि तुम दोगे 3 पग भूमि दोगे, तो अपने वचन को वापस ले लो। लेकिन गुरु बलि तजो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। बलि सोचते कि गुरु जब मेरे से इतने स्नेह करते हैं है, तो मैं उनके दिल को क्यों तोड़ूं। लेकिन गुरु बलि तजो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितनी, और ब्रज की बनिताओं ने अपने पत्नियों का त्याग कर दिया, अपने पत्नियों का त्याग कर दिया। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर के वो जो है गई, है ना। कंत ब्रज बनितनी भेज के मंगलकारी, तो ये सभी जग के मंगलकारी हैं। इन्होंने जो है कृष्ण के लिए जो है अपने स्नेहियों का त्याग कर दिया, स्नेह का त्याग कर दिया, जिनका बड़ा स्नेह था। तो ये जो है मतलब सब दिल तोड़ने वाले हैं, जो उनसे बहुत बड़ी आशा करते थे, है प्रहलाद से, हिरण्यकश्यप वो आशा करता था कि मुझसे भी बड़ा असुर निकलेगे लेकिन उसको उसका दिल तोड़ा है। माता कह के ही आशा करती थी भरत से कि जो है बड़ा राजा बने और अपना जो है पूरा शासन जमाए, अपनी शक्ति स्थापित करे, है ना। भरत ने दिल तोड़ दिया कह के ही का है। बलि महाराज ने अपने गुरु का दिल तोड़ दिया। गुरु महाराज चाहते थे कि बलि जो है असुरों के राजा बने और सब शक्तियाँ प्राप्त करें, है ना, लेकिन दिल तोड़ दिया। सब दिल तोड़ने वाले हैं और जग के मंगलकारी हैं। इनकी याद करने से अपना सब प्रकार का मंगल होता है। ये जगह बहुत पवित्र है, इनका जो स्मरण है वो इतना पवित्र है कि फिर मंगल ही मंगल है, है ना। जबकि ये सब कैसे हैं, दिल तोड़ने वाले हैं, बड़े बहुत कठोर। उसका फोन है ब्रजेश का, उसी का क्या नाम है, सतबीर, अभी तो मैंने बंद कर दिया। अच्छा, तो ये सब जो है जग के मंगलकारी। तो यहाँ पर ब्रज की स्त्रियाँ, ब्रज की स्त्रियों के बारे में बताया गया है ना। इसी प्रकार से द्रौपदी ने भी जो है कृष्ण से ये प्रश्न किया, द्रौपदी ने भी कृष्ण से प्रश्न किया है कि युधिष्ठिर महाराज ने मुझे दांव पर लगाया, जुए के दांव में लगाया, कहाँ तक उचित है ये, द्रौपदी ने प्रश्न किया है। अब द्रौपदी तो बहुत पतिव्रता है, बहुत पतिव्रता है और पत्नियों की सेवा में लगी थी, है ना। युधिष्ठिर ने जो है द्रौपदी को दांव पर लगाया और इसी कारण से द्रौपदी का अपमान हुआ। तो वैसे तो देखा जाए तो अपने पति का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन द्रौपदी ने जो है सबके सामने तो विरोध नहीं किया अपने पति का, ये प्रश्न ही किया कि जब वो अपने को ही हार गए तो फिर जो है मुझे दांव में लगाने का फिर प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर जो है फिर उस तरह से मिला नहीं जिस तरह से वो सभा में उसने प्रश्न पूछा था, और उसका अपमान भी हुआ। लेकिन बाद में जब भगवान कृष्ण आए काम्यक वन में पांडवों से मिलने के लिए, तो कृष्ण से पूछा कि कहाँ तक उचित है युधिष्ठिर महाराज, तो धर्म के मतलब पूरे ज्ञाता हैं और धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, तो कहाँ तक उचित है कि उन्होंने मुझे दांव पर लगाया। एक पति जो है अपनी पत्नी को दांव में लगाए और जुए में हार जाए और हार गया, और हारना तो निश्चित था ही, और ना भी निश्चित हो तो भी पति को जो है अपनी पत्नी दांव में नहीं लगानी चाहिए। अगर हार गया तो पत्नी फिर जो है दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी, तो ये कहाँ तक उचित। तो द्रौपदी ने प्रश्न किया। तो धृष्टि महाराज का जो है उसको द्रौपदी को समझ में आया कि ये धर्म नहीं है, पति का धर्म नहीं है कि जो मुझे दांव पर लगाया। खैर कृष्ण ने उत्तर दिया, तो युधिष्ठिर महाराज ऐसी स्थिति में थे कि उनकी गलती नहीं थी, कृष्ण ने समझाया जो भी हो, लेकिन तो भी द्रौपदी ने प्रश्न किया है? क्योंकि स्त्री को जो है इतना समझदार होना चाहिए, विचार करना चाहिए कहाँ तक उचित है कहाँ तक उचित नहीं है। तो ये सब बातें हैं। सुकन्या का चरित्र आता है श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सुकन्या का चरित्र आता है। तो सुकन्या जो है राजा सरयाति की पुत्री थी, सरयाति मनु के पुत्र थे, इस मनमंत्र के जो मनु वैवस्वत मनु हैं उनके पुत्र थे सरयाति, तो उनकी पुत्री सुकन्या थी, है ना। तो कुछ ऐसे कारण बने कि राजा महर्षि च्यवन जो बिल्कुल वृद्ध थे और अंधे अंधे हो गए और बिल्कुल वृद्ध थे हैं, तो राजा सरयाति ने अपनी पुत्री का विवाह च्यवन मुनि के साथ कर दिया, है ना। और सुकन्या जो है बहुत सुंदर और बिल्कुल युवती थी, है ना। लेकिन जब विवाह कर दिया तो अपने पति की सेवा में पूरी मतलब उसने जो है अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि हर प्रकार से उसने लगाई और इन सब गुणों का अभ्यास किया, इन सब गुणों का अभ्यास किया सुकन्या ने। और बाद में च्यवन मुनि जब उसकी सेवा से बहुत संतुष्ट हो गए तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया और अश्विनी कुमारों ने उनको तरुण बना दिया, जवान बना दिया। और सुकन्या जो है देखती है कि उसके पति जो है बिल्कुल बूढ़े हैं, चल नहीं पाते हैं, अश्विनी कुमार जो है बिल्कुल बिल्कुल जवान हैं, सुंदर हैं। तो जो है च्यवन मुनि को मतलब हाथ पकड़ करके वो एक सरोवर में ले जाते हैं, सरोवर में डुबकी लगाते हैं। और जब डुबकी लगा करके जब निकलते हैं बाहर तो तीन जो है पुरुष निकले, बिल्कुल सुंदर तरुण, कमल की माला धारण किए, है ना। और च्यवन और जो है सुकन्या की परीक्षा लेने के लिए तीनों आ गए बिल्कुल एक जैसे। तो वो समझ गई कि मेरे पति भी जो है अश्विनी कुमारों की तरह तरुण और सुंदर हो गए हैं, है? लेकिन उसने मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा, है? कि अब मैं किसी को भी चुन लूँ तो तीनों एक ही जैसे हैं। नहीं, मेरे पति चाहे सुंदर हों चाहे कुरूप हों, ये मुझे पति चाहिए। अश्विनी कुमारों से उसने प्रार्थना की कि आप लोग जो है मुझे पति पहचानवा दीजिए कि मेरे पति कौन है। पति को पहचानने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन सुकन्या ने जो है ये नहीं सोचा कि मेरे पति अब सुंदर तरुण हो गए हैं, लेकिन यहाँ तो तीन तीन हैं, तो तीनों को पति बना लूँ या तीनों में से किसी को पति बना लूँ या जो चाहे वो मेरा पति बन जाए। छूट दे देती किसी को भी कि आप तीनों में से कोई भी मेरे पति बन जाओ। लेकिन उसने जो है उसने उसका मन और इंद्रियां उसकी पूरी तरह से नियंत्रित थी और उसने अश्विनी कुमारों से जो है प्रार्थना की कि आप मुझे मेरे पति को पहचानवा दीजिए कि मैं अपने पति को पहचान सकूं। और जब उन्होंने प्रसन्न हो गए उसके इस भाव से अश्विनी कुमार, तो पति को जो है पहचानवा दिया। तो जो है च्यवन मुनि अब जो है बिल्कुल सुंदर तरुण दिखाई दे रहे हैं। जब राजा सरयाती आए अपने पुत्र को देखने के लिए तो देखा कि अरे वो महर्षि कहाँ चले गए जो बिल्कुल बूढ़े थे अंधे थे, हाँ, और ये मेरी पुत्री जो है मेरे कुल को कलंक लगा रही है। एक सुंदर जवान पुरुष को इसने अपना पति बना लिया है और अपने पति का त्याग कर दिया है जो बूढ़े थे और अंधे थे, हैं, तो खूब डांट रहे हैं, हैं, कि तू मेरे कुल में जो है, हैं, मेरे कुल को कलंक लगाने वाली है, हैं, तूने जो है अपने पति का त्याग कर दिया। तो सुकन्या जो है हंस करके बोली कि नहीं, आपके जामाता यही हैं। और फिर जब पूरी बात बताई तो राजा सरयाती भी बड़े प्रसन्न हुए। तो ऐसी घटनाएं आती हैं। देवहूति का भी विवाह जो है कर्दम मुनि के साथ हुआ। तो कर्दम मुनि वैसे तो जवान थे लेकिन बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे और देवहूति ने जो है स्वीकार कर लिया कि मेरे पति हैं। कर्दम मुनि ने इस शर्त पर विवाह किया था कि जब पुत्र हो जाएगा, मनुष्य कहा था आपकी पुत्री को जब पुत्र हो जाएगा तो फिर मैं इसका त्याग कर दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। और मनु ने पूछा देवहूति से, तो देवहूति ने मौन स्वीकृति दे दी, मौन स्वीकृति दे दी, है ना। तो विवाह हुआ और देवहूति ने जो है सब प्रकार के भोगों का त्याग करके कर्दमुनि की सेवा की। कर्दमुनि की सेवा में वो भी एकदम कुरूप हो गई, उसने भी जो है अपना श्रृंगार नहीं किया क्योंकि पति भी जो है ऐसी तपस्या में लगे हुए थे, तो उसने अपना श्रृंगार नहीं किया, वो भी खाती पीती नहीं थी, तो बिल्कुल दुर्बल हो गई और बिल्कुल कुरूप हो गई, बहुत खराब हालत हो गई। जबकि राजा की पुत्री, फिर कर्दम मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए तो फिर उन्होंने भी एक सरोवर अपनी शक्ति से बनाया, उस सरोवर में स्नान करवाया देवहूति को और देवहूति सुंदर हो गई। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद समझा रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए कि पति जो है पतित ना हो तो पत्नी को इन सब गुणों के साथ पति की सेवा करनी चाहिए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है? हाँ जी। सती का मतलब जल जाना, सती शब्द जो है ये जो बना है जल जाने के लिए, तो वो उस घटना से बना है जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया। शिव जी की पत्नी थी सती। सती का अर्थ वैसे जल जाना नहीं है, सती जो है ये शब्द बना है सत से, जैसे हम कहते हैं सत्संग तो सत्पुरुष है ना, तो सत्पुरुष को कहते हैं तो सत स्त्री को बोलते हैं, जैसे साधु पुरुष को साधु बोलते हैं, स्त्री को साध्वी बोलते हैं, आप समझे। तो सती शब्द जो है अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो सत को स्त्रीवाचक बनाया जाए, और सत का मतलब है अच्छा, साधु सत्पुरुष सत्संग साधु संग बोलते हैं है? तो उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए सती और साध्वी, आप समझ रहे। हाँ, तो पार्वती जी ने शरीर नहीं त्यागा, सती ने शरीर त्यागा और फिर वो पर्वत की पुत्री हुई तो पार्वती कहलाई वो सती, तो पार्वती ने शरीर नहीं त्यागा, ठीक है। तो सती ने शरीर त्यागा, और सती ने शरीर त्यागा क्योंकि दक्ष ने जो है शिव जी का अपमान किया था। हाँ, तो उसमें ये भी नहीं था कि पति की मृत्यु होने के बाद वो जली हो, बल्कि उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को जला लिया सती ने, इस प्रकार से अपना शरीर त्याग दिया। तो इसलिए वो सती जो है एक प्रथा बन गई, सती प्रथा बन गई। लेकिन जो है निम्न जो वर्ण है समाज के, जो निम्न वर्ण हैं शूद्र हैं या और उनसे भी निम्न हैं, तो इनमें जो है विधवा विवाह की प्रथा है और अनुमति है। जैसे कि राक्षस है ना, तो राक्षस जाति में जो है मतलब स्त्रियां हैं विधवा हो जाती हैं तो दूसरे से विवाह कर लें है ना, तो ये जो है अनुमति है शास्त्रों में। और जो तारा थी वो बानर किम पुरुष जाति है ना, तो विषय वृत्ति से ज़्यादा अच्छा है कि विधवा विवाह कर ले अपना, ठीक है ना। तो विषय वृत्ति को रोकने के लिए विधवाओं का विवाह होना चाहिए। तो ये जो है पतितों के लिए, यहाँ पर पतित समाज में पतित लोग हैं, लेकिन वो और ज़्यादा पतित ना हो कि वेश्यावृत्ति हो, वेश्यावृत्ति शुरू हो, इसलिए पतितों की रक्षा के लिए विधवाओं का विवाह करना है ना। लेकिन जो उच्च वर्ण की स्त्रियाँ होती थीं वे स्वतः अपने शरीर को जलाती थीं अपने पति के साथ में, तो ये कोई फोर्स की बात नहीं होती थी, बल प्रयोग की बात नहीं होती कि मरना पड़ेगा जलना पड़ेगा है ना। तो फिर ये सती प्रथा जब मतलब चालू हो गई तो ये बहुत गलत तरीका था ना? कि पति की मृत्यु हो जाए तो उसको जबरदस्ती ढकेल ढकेल करके उसको जो है आग में जलाते हैं। तो वो फिर राजा राम मोहन राय ने इसको बंद कराया था है ना। तो ये आत्मज्ञान में बहुत ऊंचे धरातल पर जो स्त्रियां होती थीं तो वो अपन वो सती होती थीं, जैसे महाराज पृथु है ना, तो उनकी पत्नी अर्ची, तो पृथु ने शरीर त्याग दिया तो उन्होंने जो है पृथु के शरीर को जो है अपने गोद में रखा और जो है चिता में बैठी और खुद आग लगाई, इस प्रकार से है ना। तो सती जो है मतलब कोई स्त्री अगर होती है सती है, तो एक तो यह है कि पति हो मतलब ऐसा गुणवान हो पति, पहली बात ये, और फिर दूसरा है वो अपनी स्वेच्छा पूर्वक जो है अपने शरीर को मतलब त्यागे, लेकिन यहाँ वो नहीं है कि बल प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। हाँ जी ठीक है भाई, युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को जो दांव पर लगाया तो उनकी गलती नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी, जबकि है तो बहुत गलत। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां कोई व्यक्ति गलती करने के लिए विवश हो जाता है और वो उसकी गलती नहीं मानी जाती है ना। तो कृष्ण से जब पूछा द्रौपदी ने, आपने से प्रश्न किया, अगर ये आप प्रश्न नहीं करते तो ये बातें आती भी नहीं सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब कृष्ण ने द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा कि कहाँ तक उचित था इनका मतलब कहाँ तक ये धर्म के अनुसार उचित रहा कि इन्होंने मुझे दांव में लगाया है, तो कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हें दांव में लगाया युधिष्ठिर महाराज ने, इसका कारण केवल एक ही था कि मैं नहीं था उधर, मैं नहीं था। कृष्ण बोले मैं नहीं था। कृष्ण क्या बोले? मैं नहीं था, इसलिए अगर मैं होता तो पहले मैं ये जुआ ही नहीं होने देता। जुआ के लिए बना नहीं कर सकते, और जुआ में निश्चित था कि वो हारेंगे, वो तो पूरा कपट का जुआ था, निश्चित था, वो मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो है मना कर सकता है, तीसरा व्यक्ति हो। कृष्ण बोले कि अगर मैं होता तो मैं पहले दुर्योधन को मना करता कि जुआ के जो है बहुत दोष होते हैं, जुआ नहीं खेलना है, मैं मना करता। और वो अगर नहीं मानता तो मैं उसी समय उसका वध कर देता दुर्योधन का। ये सब जुआ का दोष है, और जुआ के लिए मना नहीं कर सकते युधिष्ठिर महाराज। बड़ी गहरी बातें हैं। ऐसे कोई कहे कि युधिष्ठिर का कितना दोष है, है ना, तो बहुत इसमें विचार किया गया। भीमसेन ने कहा कि मैं युधिष्ठिर महाराज के दोनों हाथों को जलाना चाहता हूँ, जिन हाथों से इन्होंने द्रौपदी को जुए में लगाया। मुझे हार गए, भीमसेन को भी हार गए, अर्जुन को भी हार गए। कहते हैं भीमसेन कहते हैं मुझे इस बात का दोष नहीं है, अपने चारों भाइयों को दांव में लगा दिया। लेकिन द्रौपदी को उन्होंने दांव में लगाया, इस बात से जो है इतने ज़्यादा वो दुखी हो गए। हाँ, कहते सहदेव से, सहदेव अग्नि लाओ, मैं इनके दोनों हाथों को जलाऊंगा, युधिष्ठिर महाराज के दोनों हाथों जलाऊंगा। तो भीमसेन का भी कहना गलत नहीं था, लेकिन फिर भी है ना, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां कोई व्यक्ति जो है गलती करने के लिए मजबूर हो जाए और उसकी गलती नहीं मानी जाती, ऐसी स्थितियां है ना। हाँ जी, हाँ, उसे दोष नहीं लगेगा, उसे दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो निर्वाह करने ही, निर्वाह के लिए उसकी मजबूरी है। तो कहीं मजबूरी में कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो उसे करना पड़ता है, तो उसमें उसको दोष नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इंद्रिय तृप्ति, जहाँ तक इंद्रिय तृप्ति है, तो फिर अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए वो मतलब वो ले रही है पति का धन, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन जहाँ जीवन की आवश्यकताएं हैं, तो उसके लिए उसको दोष नहीं लगेगा। डाकू रत्नाकर, हाँ, नहीं, क्योंकि स्त्री चूंकि आश्रिता होती है, वो तो अपने पति का चुनाव भी नहीं कर सकती। अब जैसी भी स्थिति हो, उसका विवाह हुआ किसी व्यक्ति के साथ, वो विरोध नहीं कर सकती, है ना। और बाद में पति जो है गलत हुआ, बाद में फिर वो पतित हुआ है, वो गलत काम करने लगा, तो पत्नी क्या कर सकती है। तो यहाँ पत्नी का जो है मतलब कोई बस नहीं है, उसका कोई बल नहीं, अबला है, आश्रिता है। लेकिन बात यही है कि अगर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने पति को प्रोत्साहन देते कि हाँ अच्छा कर रहे हो, और लाओ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर उसको तो फिर वो लेगी उसका कर्म। हाँ जी, आज की परिस्थिति के अनुसार, हाँ वो अलग बात है, ये सब अलग अलग विचार करना पड़ेगा। मतलब स्थिति, इस समय की स्थिति कैसी है, पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी, स्त्री के लिए कुछ नहीं था कि भाई वो जीव का अर्जन करे, ऐसा नहीं था। अब जो स्थितियाँ हैं वो अलग हैं। हाँ जी माता जी, ऐसी स्थिति में, हाँ हाँ, जैसे प्रभुपाद तो यहाँ लिख रहे हैं अलग रहना चाहिए, अपने पति से अलग रहना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, हाँ, तो वो कर सकती है, लेकिन साथ साथ अपने चरित्र की रक्षा भी करे, अपने चरित्र की रक्षा भी करे। फिर ये नहीं कि फिर वेश्यावृत्ति कर ले, है ना, तो सच्चा है फिर पति के साथ ही रहें, है ना। फिर ये नहीं है कि फिर वेश्यावृत्ति करें, ये नहीं, ठीक है ना। हाँ जी रुक्मिणी कृष्ण,
शिवास ठाकुर को बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे घर के कुत्ते और बिल्लू का उद्धार कर दूंगा, और कोई स्त्री भक्त है और पति पतित है उसका उद्धार कर।
आपका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु ने शिवास ठाकुर से कहा कि तुम्हारे घर के कुत्ते बिल्लियों का भी मैं उद्धार करूंगा, फिर
जैसे किसी घर में माता जी अच्छी भक्त है,
हाँ
महाप्रभु का पति पतित है,
हाँ
होगा
नहीं, वो अलग चीज़ है। यहाँ जो कुत्ते बिल्लियों के लिए कहा है, तो कुत्ते बिल्ली तो ऐसे हैं कि वे तो पते थे, उनके पास तो कोई स्वतंत्रता नहीं है और आश्रित हैं श्रीवास ठाकुर के, तो कुत्ते बिल्ली तो कुत्ते बिल्लियों का धर हो जाएगा, कुत्ते बिल्लियों का धर हो जाएगा, वो तो उनके द्वारा पले हुए हैं, है ना, उनका उद्धार हो जाएगा, पति का नहीं। अगर वो जो है मतलब विरोध कर रहा है अपनी पत्नी का, उसका उद्धार नहीं होगा,
विरोध नहीं कर रहा, ठीक है, भक्ति कर रहा
है। हाँ अगर विरोध नहीं कर रहा है और पति के कार्य में प्रोत्साहन दे रहा है, तो वो जो है उसका
प्रोत्साहन नहीं है, पति भूल गलत आदतों में है, लेकिन पत्नी को विरोध नहीं कर,
पत्नी का विरोध नहीं कर रहा है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में भी वो उसका जो है कुछ हिस्सा लेगा, उसके माना शुभ कर्म उसका बनेगा।
हाँ जी, स्त्री का 50% पाप जो पति को जाता है, तो अगर स्त्री भक्त है तो उसका पाप क्या पति
जाए? अगर पति जो है पत्नी के कार्यों में सहयोग दे तो आधा वो पाप या पुण्य जो भी है वो पति लेगा, और पत्नी भी पति के कार्यों में सहयोग देती है तो उसके पाप और पुण्य का आधा वो लेती है।
अगर ये भक्त अभक्त है, यानी कि कॉपरेटफुल नहीं है, स्त्री
सहयोग नहीं दे रही है, हाँ
अलग
दूरी, हाँ अगर दूरी बनाना है तो यहाँ जब दूरी बनाती है तो फिर वो उसके कर्म नहीं लेती, ठीक है ना,
पत्नी का कर्म जो पति को नहीं है,
नहीं दूरी बना के रखना, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दूरी बना के रखना यथासंभव, जैसे कि चरित्र भी खराब ना हो, इस तरह से दूरी बना के रखना, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री राधिका रमन की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, गौर नताई की जय।